आकाश, वायु, अग्नि, जल और मही पृथ्वी, इन पांचों का वर्णन हुआ। बहुत प्रसन्न होगा अग्नि। मनंस्यासन प्रसन्नानि साधुनाम असुरद्रुहाम। साधुओं का मन प्रसन्न हो गया। साधुओं से तात्पर्य है सज्जनों का। जितने अच्छे लोग थे, सदाचारी थे, भगवान के भक्त थे, उनका मन अपने आप प्रसन्न हो गया। भीतर ही भीतर भगवान के आने से मन प्रसन्न हो रहा था। इस पर जरा विचार कीजिए कि भगवान देवकी के गर्भ में है और सबका, साधुओं का मन प्रसन्न होने लगा है। कुछ प्राप्त तो साधुओं की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, असुर द्रुहाम। यदि कोई तत्कालिक अर्थ करे तो ऐसा लगेगा कि जो असुरों के द्रोही हैं उनका मन प्रसन्न होगा, लेकिन ये गलत अर्थ है। असली अर्थ है असुर द्रुहाम का अर्थ है, ऐसे अर्थ नहीं करेंगे कि ये असुरान द्रुहयन्ति ते असुर द्रुहा, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। असुरा जेभ्यो द्रुहयन्ति ते असुर द्रुहा, असुर जिनसे द्रोह करते हैं वे हैं असुर द्रुहा। साधु कभी असुर से द्रोह नहीं करते हैं। तो असुर द्रुहाम का अर्थ है असुर जिनसे द्रोह करते हैं उन साधुओं का मन प्रसन्न हो। असुर सदा से ही संसार में है। अभी समय आप पूछेंगे असुर की क्या परिभाषा है, तो असुर की सबसे प्रकट और सबसे पहली परिभाषा है गाय खाने वाले, गोमांस खाने वाले असुर। तो ये गाय का मांस खाने वाले असुर गाय को पोसने वालों से द्रोह करते रहे, ये दिखा गया है संसार में। तो असुर सदा द्रोह करते हैं सज्जनों से, साधुओं से। फिर में पहला लक्षण है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत बहुत लक्षण होते हैं असुरों के। हिंसा करके मांस आदि खाना ही, बस यही उनका भोजन होता है। भोजन से ही तो मनुष्य की पहचान होती है, कौन कैसा है वो भोजन से पता चलता है। तो असुर जिनसे द्रोह करते हैं उन साधुओं का मन प्रसन्न हो गया। जाय ने तस्मिन नेदुर दुंद भैरवी। जब भगवान के बिल्कुल अवतार का निकट समय आ गया तो देवताओं के लोक में दुंदुभिया बजने लगे। बीड़ा, बेंडू, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। जगुह किन्नर गंधर्व तुष्टुव सिद्ध चारण। किन्नर और गंधर्व उच्च स्वर से बहुत मधुर मधुर गीत गाने लगे। बहुत निकट आकर के मथुरा के निकट ऊपर आकाश में और गाने लगे, और कुछ लोग अपने लोक ही गाने लगे। जो किन्नर गंधर्वा, किन्नरा गंधर्वाश्च जगु गाने लगे। तुष्टुवु सिद्ध चारणा, और सिद्ध और चार ये भक्त जब भगवान की स्तुति करने लगे वेदों से, या तत्काल ही कोई स्तुति बना करके छंद बना करके और बोलने लगे। विद्याधर्यश्च नृत्य अप्सरो भी समम तदा, और व्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जिसके पास जो भी का थे अपने का को प्रस्तुत कर रहे थे सब भगवान के आगमन के स्वागत में। तो विद्याधरियां नाच रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अप्सराओं के साथ नाचने विद्याधरों की स्त्रियां पहले हैं, और जो अप्सराओं के साथ नाच रही थी। विद्याधर भी नाचने में बहुत प्रवीण होते हैं, नाचने गाने में। और वास्तव में स्वर्ग में जो देवता हैं वो केवल भगवान का ही जस गा गा के नाचते हैं। तो भगवान के आविर्भाव के समय गाना, नाचना, स्तुति करना, यही सब मुख्य। और विध बाजे बने लगे। दुंदुंभियां उपलक्षण है, और जो भी बाजे बज रहे थे आकाश में देवताओं के, उस बहुत मेल से बाज रहे थे, एक राग में ताल में सब बज रहे थे। देवता बड़े खुश हुए। तो जगु किन्नर गंधवा तुष्टुव सिद्ध चारणा, विद्याधर्यश्च नृतो अप्सरोभिसमन्ता मुमुचु मुनयो देवा सुमनंसी मदान्विता। और देवता बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र आदि हैं, ये सब देवा नारद आदि ऋषियों के साथ आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे मथुरा के ऊपर। मुमुचु पुष्प वर्षाणी मुमुचु मुनयो देवा सुमनंसी मदान्विता, मदान्विता आनंद में भर भर के फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवलोक में बहुत फूल हैं, चारों तरफ फूल ही फूल है। देवताओं के लोक में ये गन्ना उत्पन्न करो, जूर उत्पन्न करो, और ये गेहूं धान इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो भी भूमि है सर्वत्र विविध प्रकार के फूल खिले रहते हैं, और कहीं बहुत फल, और फलों का आकार बहुत बड़ा होता है। ऐसा लिखा है पंचम स्कंध में कि ऐसे से वृक्ष हैं आम के जिनमें पर्वत के शिखर से बड़े बड़े फल होते हैं, और जामुन के ऐसे वृक्ष हैं जिनमें हाथी के समान बड़े बड़े फल लगते हैं, और गिरते रहते 10,000 योजन ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उनसे फल गिरते हैं और फच्चे फूट जाते हैं, बहुत हल्का छिका होता है, बीज तो पता भी नहीं चल रहा है, बहुत छोटा बीज। और जामुन गिरते हैं तो गिर गिर करके उतने ऊंचे से फूट जाते हैं और फिर रस बन जाता है जूस, और अंबू रस की नदी बहती है। कहाँ नदी बहती है? जहाँ पर्वत रत्न के हैं, और उन दोनों तट पर जब जामुन रस मिट्टी से मिलता है और सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो रस मिट्टी के संजय से सूरज की किरण लगने से जम्बुनद नाम का सोना बन जाता है देवताओं के लोग। तो सोना वहां पर देवताओं किसी दुकान से नहीं खरीदना पड़ता है, शॉपिंग नहीं कर पड़ता है, वो तो ऐसे जैसे नदियों के तट पर जैसे हम लोगों के यहाँ कीचड़ होता है वैसे सोना जमा होता रहता है, और वो अभी सबसे श्रेष्ठ कोटि का सोना है, जाम्बुनद सोना। पंचम स्कंध में इन सब का वर्णन है। और उससे जिसका जो ही मन करता है कुंडल या कंठभूषण या नूपुर या कंकड़, जो गहना बनाना हो बनाते रहे, और ये सोना बनता ही रहता है, सोना बनता ही रहता है, उतना देवता लोग यूज नहीं करते हैं जितना बनता है। और लिखा गया है कि उस रस को वे कभी कभी पीते हैं तो उससे बुढ़ापा नहीं आती है शरीर में, कभी थकावट नहीं होती है, कोई घोड़ा उनसे कुछ नहीं हो सकता है। जावत जीवनम सुखम, जब जीवन रहता है सुख से देवता जीते। तो मैं यह कहा था कि अद्भुत फूल है स्वर्ग में, वहां ऐसा नहीं है कि इधर इंडस्ट्री एरिया है, इधर ये मैदा है, वो भी इंडस्ट्री के चलते नाम पड़ा है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, अच्छा जो भी है, उधर ऐसा कहीं नहीं है कि नटबट बनाया जाता है, और ये नहीं हॉस्पिटल नहीं है वहां, स्वर्ग कोई हॉस्पिटल, क्योंकि एक भी रोगी ही नहीं है तो हॉस्पिटल क्या होगा। तो वहां भरे हैं फूल और फल के वृक्ष, कभी वहां कुकिंग नहीं कर पड़ता है देवताओं को, जैसे हम लोग आते हैं रोटी भात नाना प्रकार की चीज बनाओ तब जा करके पेट भरता है तब कुछ जीते हैं, देवताओं के यहाँ सब कुछ नेचुरल मिलता है, और आए हवे लोग लिक्विड बस कल जूस पीते, ठोस पदार्थ तो खाते ही नहीं इस पृथ्वी पर से, क्या खाते, घी खाते हैं बस। एक बार आई थी स्वर्ग से, साफ दे दिया गया था पूर्वशी, तो महाराज पूर्वा से सर करती है कि महाराज मैं केवल घी खाऊंगी, नवम स्कंध में था है, उसी कहती है महाराज पूर्वा से आप मैं कभी नग्न नहीं देख सकती हूँ, मनुष्यों का स्वभाव है न रहा करते कहीं के, वो कहती है मैं आपको नग्न नहीं देखना चाहती हूँ और मेरा हार होगा घी, मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। तो भक्षितम में से तेरा भोजन होगा घी। तो स्वर्ग से देवी आई थी तो खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं की, खाना तो अपनी रुचि के अनुसार करना, ठीक है आपके साथ रहूंगी आपकी पत्नी बन करके, लेकिन आप जो भी खाना हो खाइएगा, लेकिन मैं तो घी पीऊंगी। कभी कभी इस तरह से किसी किसी पत्नी को करना पड़ता है, पति के पास जाती है तो पता चला कि पति जी नॉन वेज भी चलाते हैं, तो नॉन वेज खाते हैं, तो अब तो पत्नी तो वैष्णव कुल से गई है, तो उसको बड़ा कठिन पड़ता है कि अब इनके साथ कैसे क्या करें। एक तरफ पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना, पति के लिए भोजन बनाना, और दूसरे तरफ अपना परम धर्म है कि भगवान का प्रसाद खाना। तो उर्वशी की तरह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा जो भोजन है मैं तो वही करूंगी। और पति को भोजन कराना चाहिए भगवान का प्रसाद, उनके नन भेज में सहायता नहीं करनी चाहिए। ये बहुत कठिन पड़ता है कभी कभी एडजस्ट करना। लेकिन पतियों को तो समझना चाहिए ना खाने पीने के विषय में, कभी भूल करके भी मांस नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद जी नो मीट ईटिंग पर बहुत जोर दिए, नो मीट ईटिंग। तो मैं देवता की बात कह रहा हूं कि आखिर खान पान से पोशाक से पता चलता है ना कि कौन कैसा है। तो देवी जब मनुष्य के समाज में रहने आई थी तो जानती थी कि ये मनुष्य लोग बहुत गड़बड़ खाया करते हैं, और गड़बड़ भोजन से उसका तात्पर्य मांस मदिरा से नहीं था। महाराज पुरुरवा के घर में ये सब नहीं चलता था, लेकिन ये बहुत प्रकार से जो ठोस पदार्थ खाते हैं, ये दाल रोटी भात ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको केवल घी चाहिए, ये देवताओं का भोजन है। तो जो इस पृथ्वी पर आकर के केवल घी पी रही है वो वहां क्या दूसरा खाती होगी? वहां तो केवल तरल पदार्थ चलता है भोजन में। अच्छा, देवताओं के लोक में जो भोजन है तरल पदार्थ, वो सब डायरेक्ट रक्त बन जाता है, उसका मल मूत्र नहीं बनता है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि देवताओं के लोक में कोई कभी पेशाब नहीं करता है। आए? नहीं, सुलभ या दुर्लभ कोई शौचालय नहीं है वहां। वहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य के यहां तो एडजस्ट करना पड़ता है, आप जी ही नहीं सकते हैं। आप कोई भी फ्लैट लीजिए तो उसमें शौचालय भी देखना पड़ता है ठीक है कि नहीं, क्योंकि शरीर से ही गंदगी निकल रही है, बाहर से नहीं। पर देवताओं का शरीर ऐसा है कि उससे कभी उनके शरीर से पसीना तक नहीं निकलता है, फिर पर प्रस्राव और शौच आदि निकलने का तो प्रश्न ही नहीं। जो ऐसे चीज खाते सब सेट हो जाता है, रक्त बन जाता है। देवता ऐसे हैं, और वे प्राय सब भगवान के भक्त हैं। देखिए सारे देवता भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। क्षीर सागर के तट पर गए थे कई वर्ष पहले भगवान को बुलाने के लिए, उसमें आदमी कौन गया था? कोई नहीं गया था। मनुष्य को तो पता ही नहीं लगता है कि देवता लोग उधर क्षीर समुद्र में पहुंचे हैं। मनुष्यों का कितना कम ज्ञान है, कभी कभी विचार करते हैं मनुष्य तो कहते हैं देवता है ही नहीं, देव है ही नहीं। और कभी कभी कुछ लोग विचार करते हैं तो कहते हैं वो डेमी गॉड है। अरे डेमी गॉड है, डेमी गॉड का भी अर्थ कम से कम होता है छोटा भगवान, ये अर्थ होता है ना शब्द के अनुसार। उनका बहुत घनिष्ठ संबंध भगवान से है। आप ही बताए, मथुरा के कारागृह में जब देवता लोग गए थे स्तुति करने, तो मनुष्य भी कोई साथ गया था क्या? नहीं गया था। क्षीर सागर में जब ये लोग गए तो प्रार्थना करने के लिए, भगवान से अपील करने गए कि आप आइए, तो यहां से भी कोई अमेरिका का प्रतिनिधि या भारत का या रशिया से कोई गया था क्या? पता ही नहीं होगा इन मूर्खों को कि कोई भगवान की प्रार्थना कर रहा है, या भगवान कब आ रहे हैं इसका कोई ज्ञान नहीं। लेकिन मनुष्य का अभिमान देखिए, देवताओं पर विचार करता है तो कितना हीन दृष्टि से, वो है ही नहीं और है भी तो हमसे मतलब क्या है, इस तरह से बोलता है। लेकिन भगवान के अवतार के समय देवता गा रहे थे, देवता बजा रहे थे और फूलों की वर्षा कर रहे थे। अब कोई ये कहे हम तो देखते नहीं है, तो तुम नहीं देखोगे तो इससे मतलब क्या है, हम देखते नहीं है, हम देखते नहीं, और तुम क्या देखते हो, अपने को देख रहे हो, किसी से पूछा जाए अपने को देखते हो, तुम्हारे सिर में कितना केस है देखते हो, जब अपना ही हम नहीं देखते हैं, देवताओं को क्या देख पाएंगे। देवता तो यहाँ भी हैं, हमारे हाथ में है, हमारे आंख पर है, कान में है, जिह्वा पर है, पैर में है, देखते हैं नहीं देखते। मनुष्य की दृष्टि ही बहुत सीमित है वास्तव में, इसीलिए शास्त्र पढ़ करके पहले देवताओं को समझना चाहिए क्या है, कितना महान है, उनके उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो कुछ भी है सब स्पिरिचुअलाइज्ड है, उनका भोजन, उनकी पोशाक, भगवान के प्रति उनकी धारणा और उनका सब कुछ दिव्य है, मतलब पृथ्वी की अपेक्षा अलौकिक है। तो ये देवता सब भगवान की सेवा करते हैं। अब कभी भी भगवान का अवतार देखिए तो वहां देवता सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। यहां तक कि सबसे क्रूर अवतार भगवान का हुआ नृसिंह देव के रूप में, वहां भी देवता भगवान के पास पहुंच गए, डर रहे थे, दूर थे, लेकिन सब सेवा के लिए पहुंच गए, सब जय जयकार बोल रहे थे। जो वाराह देव का आविर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी लीडिंग पर्सन थे, नेतृत्व कर रहे थे और सारे ऋषि स्तुति कर रहे थे, देवता फूल बरसा रहे थे। वामन देव जब अवतार लिए तो सारे देवता फूल बरसाते हैं और उनके जन्म पर बधाइयां गा रहे थे, ठीक ऐसा ही वर्णन है आठवें स्कंध में। भगवान कपिल देव का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी आए और सारे देवता फूल बरसा रहे हैं, गा रहे हैं कर्दम जी के आश्रम पर। इतना घनिष्ठ देवताओं के साथ भगवान का संबंध, तो देवता इस तरह से भगवान की सेवा कर रहे थे। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुर अनुसागरम, और मेघ मंद मंद गरज रहे थे, बहुत जोर से नहीं गरज रहे थे, ये सोच करके कि भगवान बच्चा है, कहीं ज्यादा गरजने पर भगवान डर न जाए, बच्चों का कलेजा दहल जाता है ज्यादा आवाज सुनने। इसीलिए हमने देखा है कि इस पृथ्वी पर भी जहां हॉस्पिटल होता है वहां पर लिखा रहता है किसी व्हीकल के लिए, गाड़ी के लिए, कि यहाँ सीटी नहीं देना है, और खास करके जहां प्रसव गृह होता है, जहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वहां तो बिल्कुल आवाज नहीं करना है, धीरे धीरे जाना है, अन्यथा बहुत हैवी फाइन हो जाता है सीटी देने पर। तो भगवान के जन्म के समय बादल अब गरजना इनका एक गुण है, तो अपने गुण प्रस्तुत कर रहे थे लेकिन मंदम मंदम। देवता जो गा रहे थे तो उनके गान से एक बाजा के रूप में अपने ध्वनि को इस्तेमाल कर रहे थे थोड़े पूरा करने के लिए। मंदम मंदम जलधरा जगर जो, और गर्जना मतलब बादल प्रसन्न थे, तो मेघ बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वे ये बारंबार सोच रहे थे कि इस बार हमारे नाम के साथ कृष्ण का नाम जुड़ेगा, एक नाम होगा घनश्याम, तो घन तो हमारा नाम है और हमारे शरीर के रंग से श्री कृष्ण के शरीर के रंग की उपमा दी जाएगी, तो हम तो धन्य हो गए। वास्तव में भागवत में आप देखेंगे 500 जगह से अधिक भगवान के शरीर की उपमा दी गई है बादल से, घनवत श्याम, घनवत उज्ज्वल, मेघ श्याम कनक परिधि, मेघ के समान श्याम शरीर है भगवान, तो मेघ धन्य हो गए। आज आकाश में ये बहुत खुशी से छा गए, इनका इतना पुलक हुआ, इतना आनंद हुआ कि बढ़ गया है शरीर आकाश। हम धन्य हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उपमा हमारे शरीर से दी जाएगी और हमारे संबंध उनका नाम पड़ेगा मेघ श्याम, घन श्याम, घन श्याम नाम बहुत है, घन श्याम सांवरो घन श्याम, तुम तो प्रेम के अवतार हो। घनश्याम बहुत प्रिय नाम है वास्तव में। घनश्याम यह भगवान के प्रेम और भक्ति को सूचित करने वाला है। इसमें भगवान के रूप की कथा है। घनश्याम, मेघ श्याम, जलद श्याम, उसमें भी शब्द है ना, एक श्लोक है ब्रह्म संहिता में या कहां पर, सदा घनश्याम घनश। और बादल ये भी सोच रहे हैं कि इस बार भगवान गोचारण करेंगे, ब्रज में घूमेंगे बिना जूता के बिना छाता के, तो हम श्री कृष्ण के ऊपर था करके और उनको सुख देंगे, ये मैं अभी से सोच रहे हैं। तो इनको बहुत खुशी हो रही है, एक तो हमारे साथ उनके नाम की समता, रूप की समता आएगी और हमको सेवा का अवसर मिलेगा। तो बादल नाच रहे हैं आकाश में, गा रहे हैं, उनके गर्जन का यह अभिप्राय, बहुत प्रसन्न। और गोपियों ने कहा है वेणु गीत में, धन्य है सखी ये बादल, देखते हैं कि श्री कृष्ण जब धूप में गाय घेरने जा रहे हैं, जहां जहां जाते हैं वहां ये अपने शरीर को फैला देते हैं और शरीर को फैला करके सूर्य प्रकाश रोकते हैं। कृष्ण के ऊपर से, गोपों के ऊपर से और गौओं के ऊपर से भी प्रकाश रोकते हैं, वे ठंडा में रहे और थोड़ा थोड़ा सीकर की वर्षा भी करते रहते, ठंडा करते रहा। तो गोपियां कहते हैं कि अरे सखी, वास्तव में कृष्ण की सेवा ये बादल कर रहे हैं, अपना देह तान करके सूर्य के प्रकाश को सहते हैं, ताप को सहते हैं और श्री कृष्ण तो ताप नहीं आने देते, ये धन्य है। हम तो कृष्ण की सेवा का अवसर ही नहीं मिलता, हमारे पति तो ऐसे कठोर हो गए हैं कि थोड़ा सा कृष्ण सेवा गंध भी सुनते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते। हमारा दुर्भाग्य, वास्तविक भाग्य मेघ का है जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस तरह मेघ बहुत प्रसन्न है और सागर के पास गरज रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जगर्जु रनु सागर, हम सागर के पास मेघ गरज रहे हैं, तो मथुरा से यदि वर्णन करेंगे तो बहुत दूर होगा मेघ। यह सागर का अर्थ है कालिंदी का दह है या मानसी गंगा, और थोड़े बड़े हैं इसलिए उनको सागर का, तो यहीं पर पास नहीं गरज रहे हैं, कहने का आशय यह। ऐसा नहीं कि अब उधर बंगाल में गरज रहे हैं चाहे इधर बॉम्बे तरफ गरज रहे हैं तो उसको सुनकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, मथुरा के ऊपर ब्रजमंडल में गरज रहे हैं। ठीक है, आधी रात के समय भगवान प्रकट हुए देव रूपिणी देवकी से। देव रूपिणी यहाँ आया है कि माता देवकी भी साक्षात विष्णु स्वरूप है, तो चिन्मय है, भगवान की वह शक्ति है, वह कोई सामान्य नहीं है इस जगत की जो भगवान की जननी बने। तो भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में पुष्कल चंद्रमा उदित होता है, आपने देखा है पूर्व दिशा चंद्रमा उगता है, वास्तव में पूर्व दिशा चंद्रमा को जन्म नहीं देती है, यह तो चंद्रमा का स्वभाव है कि वह पूर्व दिशा में उगता है, ऐसा नहीं है कि पूर्व दिशा जन्म देती है, चंद्रमा अपने आप उगता है। यह दृष्टांत दे का तात्पर्य यह सुखदेव गोस्वामी की भगवान को वास्तव कोई जन्म नहीं था, हम लोगों का शरीर तो वास्तव में जन्म लिया है, माँ के उदर में इस शरीर का निर्माण वृद्धि होती है, लेकिन भगवान वास्तव में किसी के जन्मे हुए नहीं है, स्वतः सिद्ध वस्तु है, पर कृपा करके किसी को अपनी माँ बनाते हैं और उसके गर्भ से प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दला कौशल्या हितकारी, वे प्रकट होते हैं, हम लोग प्रकट नहीं होते, हम लोग को धीरे धीरे शरीर बनाया जाए, हमारा शरीर धीरे धीरे, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान डायरेक्ट अपने पूर्ण विकसित शरीर से प्रवेश करते हैं, मन में पिता के, पिता के मन से माँ के मन में, और माँ के मन से ऐसे नीचे उतरते हैं गर्भ में। भगवान का शरीर धातु का नहीं है, धातु संबंध नहीं है, रज वीर का बना हुआ नहीं है, यह बात निश्चित समझ लेनी चाहिए वैष्णवों को, अन्यथा बहुत बड़ी भूल होती है, श्री कृष्ण को समझने के लिए पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण का शरीर है क्या। इसे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आविरासी तथा प्राचीन सिंदूर व पुष्क। जैसे पूर्व प्राची दिशा में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ है, उस तरह से माता देवकी के गर्भ से कृष्ण चंद्र उदित हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो चंद्रमा पूर्व दिशा में उगता है तो कोई भी क्या ऐसा मूर्ख है इसमें संसार में जो कहेगा कि पूर्व दिशा ने जन्म लिया? नहीं, पूर्व दिशा में चंद्रमा ने जन्म लिया ये कहा जाता, प्रकट हुआ चंद्रमा, लेकिन भगवान जन्म वास्तव में नहीं लेते हैं। इसीलिए गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम्। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, और इस ज्ञान को भगवान चाहते हैं कि सब मनुष्य धारण करें। एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मामेति सोऽर्जुनः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को ठीक से समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरे पास आता है। भगवान की यह इच्छा है कि उनके जन्म को समझा जाए। मनुष्य अपने जीवन में सोचता है कि हमारा कर्तव्य है, वह कर्तव्य है, बहुत बहुत कर्तव्य कर्म करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भगवान को समझना है। और भगवान को समझने का मतलब भगवान के जन्म को समझना, भगवान के कर्म को समझना, के स्वरूप को समझना, वास्तव में यह क्या है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इन सब बातों का वर्णन किया जाता है। हमें समझना चाहिए, इसके लिए टाइम लगाना चाहिए। जैसे आदमी समय निकालकर सुनता है, पढ़ता है बारंबार, तो इसमें जो भी समय लगे ये सोचना चाहिए कि बहुत कम समय लगा है। सारा जीवन इसी के लिए, कृष्ण को समझने में लगने के लिए। बहुत काल तक जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तब समझ में कोई बात आती है। साधुओं के समाज में एक बार लोग कहते हैं कि 12 बरस साधु के टोली तब समझे एक बोली। कोई व्यक्ति जब 12 बरस साधुओं के संग में रहता है तब एक बात समझता है, तब समझे एक बोली। बारंबार सुनते 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 तब सत्य बात समझती है। बारंबार सुनने का प्रभाव होता है, एक बार सुने दो बार सुने उसका थोड़ा प्रभाव होगा, बारंबार सुने उसका और प्रभाव होगा, बहुत ज्यादा सुने तो ज्यादा प्रभाव होगा। बताओ, मैं बार बार कहा करता हूँ, वो 3 ठग थे और एक पंडित जी बकरा लेकर जा रहे थे, तो बकरा को उन लोगों ने 3 बार प्रवचन किया, उसको कुत्ता सिद्ध कर दिया। ऐसी कथा है कि एक पंडित जी एक बार बकरा लेकर जा रहे थे, वो पंडित जी भद्रकाली के पूजक थे, तो बकरा ले जा रहे थे कि काली जी को अर्पण करेंगे, प्रसाद खाएंगे। तो 3 ठग थे चोर, उन लोगों ने सोचा कि पंडित जी के दृष्टि में सिद्ध कर दें कि ये बकरा नहीं है कुत्ता है, तो इसको छोड़ देंगे, रास्ते में फेंक देंगे, तो हम लोग ले जाकर के बकरा को काट कर खा जाएंगे। वे लोग सोचे, तो वे तीनों चोर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए उस रास्ते में, जिस रास्ते तो जब पंडित जी गुजरे प्रथम ठग के पास, चीटर के पास, तो लगा पहले तो प्रणाम कर लीजिए और हंसने लगा। नहीं नहीं, क्यों हंसे? तो हंसी इस पर आ रही है कि आप इतने अच्छे ब्राह्मण हैं, इतना शुद्ध आचरण आपका है, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, हवन करते हैं, स्नान करके रहते हैं, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कुत्ता टांग कर क्यों जा रहे हैं। इसी पर हंसी आ रही थी, माफ करेंगे, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप ले जा रहे थे तो मुझको हंसी आ रही थी। पंडित जी कहा, नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं है तो बकरा है। लेकिन पंडित जी बकरा को ऐसे टांगे टांगे उसको छूने लगे, कान पैर देखते, नहीं तो बकरा है, बकरा है तो छूने की जरूरत क्या है। कुछ तो शंका हुई और टांगे टांगे कहे, नहीं नहीं ये बकरा है, तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुम्हारी दृष्टि गलत। तो ठग कहा कि खैर जो कुछ भी हो, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ता है, बकरा नहीं। तो पंडित जी पर एक बार के श्रवण का कुछ तो असर हुआ, लेकिन अभी मन में था कि नहीं नहीं बकरा है। तो दूसरा ठग हंसने लगा कुछ दूर पर, तो पंडित जी समझ गए कि हम पर हंस रहा है। तो पूछे कि क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? तो कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, आपको क्या हो गया है, ये कुत्ता टांग कर क्यों जा रहे हैं? पंडित जी को थोड़ा शंका बढ़ी, कुत्ता बकरा को उतार करके देखने लगे, देखे कान पैर गर्दन पूंछ, और कहे नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं, कुत्ता ऐसा नहीं होता है, ये तो बकरा है। तो दूसरा ठग कहता है ऐसा हमको लग रहा है कि कुत्ता है, और आप अब जैसा समझें, हम भी बहुत कुत्ता देखे हैं बकरा देखे हैं, लेकिन हमको तो साफ ये कुत्ता जैसा लग रहा है। अरे पंडित जी कहे कि नहीं नहीं ये बकरा है, टांग करके फिर चले, और तीसरा ठग भी उसी स्टाइल से फिर हंसने लगा। तो पंडित जी की शंका तो अब 100% बढ़ गई, और फिर भी वो पूछे कि क्यों बेटा क्यों हंस रहा है? तो पंडित जी अब कुत्ता टांग कर क्यों फिरने लगे, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब पंडित जी अब उसको देखने भी नहीं गए, बकरा को वहीं फेंक करके चले गए। बाप रे, जाकर स्नान किए नदी में, स्नान करके घर चले गए। तो बताइए जो सत्य वस्तु नहीं थी, वास्तव में वो सचमुच में बकरा था, लेकिन उसको तीन बार के 3 मिनट के प्रवचन ने सिद्ध कर दिया कि यह कुत्ता है। तो सत्य वस्तु को यदि हम बार सुने आवृत्ति करें तो क्यों नहीं वो सत्य वस्तु हृदय में धस जाएगी। एक वैष्णव कुछ वर्णन करता है, फिर दूसरे से सुने, तीसरे से सुने, फिर बार बार सुने, क्यों नहीं श्री कृष्ण धस जाएंगे हृदय में। इसीलिए पुनः पुनः बारंबार शब्द का प्रयोग किया गया है, बारंबार सुनो बारंबार सुनो बारंबार सुनो, ये सब समझना पड़ता है, बारंबार सुनने से समझ में आता है। तो भगवान का शरीर पूर्ण चिन्मय है, विभु है। अच्छा यह भी बात है कि भगवान देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका शरीर अनंत होता है, उसको मापा नहीं जा सकता। जैसे माँ जसोदा उखल में बांधते समय भगवान के कमर में रस्सी बांधने लगी, तो जितनी रस्सी जोड़ती थी वो बंधन में आने पर 2 अंगुल कम हो जाती, और कृष्ण की कमर देखने में बस उतनी ही थी। एक बच्चा था, कमर कितनी मोटी हो सकती है? तो माता जसोदा के गोद में अट जाते हैं, वो चूमती थी, लेकिन आज जब बांधने चली तो रस्सी लगाई एक अंदाज से कि कृष्ण की कमर बंध जाएगी, लेकिन जब नहीं बंधी तो दूसरा इतना बड़ा मान लीजिए जोड़ा होगा, इसको रस्सी से जोड़ करके और जब गांठ बांधने चले तो फिर 2 अंगुल कम। तब अब उब करके कई मीटर लंबा बांधी और कई मीटर लंबा जोड़ी, और जब बांधना चाहिए तो फिर 2 मीटर कम, 2 अंगुल कम। माँ जसोदा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वो जिद में थी कि बांध करके रहूंगी। इतना हैरान किया है, इतना घुमाया है गांव में, दौड़ी थी पकड़ने में, तो वो उसको निर्बंध हो गया, हट हो गया कि मैं बांध करके ही रहूंगी। और गोपियां देख रही थी, गोपियां कहती हैं माँ जसोदा से कि छोड़ दीजिए, जब लाला के भाग में बंधन नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए, घूमने दीजिए, क्या बात। अरे एक दही का मटका फोड़ दिया, आप हमारे घर से नया ले लीजिए। तो माँ जसोदा कहती थी नया तो मटका ले लूंगी, और वो मटका जो इतना दिन दूध दही खाया था वो कहाँ से आएगा? अरे छोड़ दीजिए, वो देखिए आंखों में आंसू भरा हुआ है बच्चे के, थोड़ी गलती ही कर दिया, तो आप इतना उसको बांधना चाहती हैं और बंधन लग नहीं रहा है। तो माँ जसोदा कहती थी तमाशा मत देखो, जाओ रस्सी लाओ अपने घर से। तो गोपियां जाती थी, चूंकि वो रानी थी, गोपियां लाती थी, रस्सी देती थी माँ को। जब भगवान मथुरा चले गए तो गोपियां उद्धव जी से रो रो करके कहती हैं कि उद्धव जी कहिएगा श्याम सुंदर से कि अब हम उखल में बांधने के लिए रस्सी नहीं देंगी, कभी भी चाहे जो कुछ करेंगे प्रियतम आ जाए यहाँ, जितना करके दे रही थी शायद ये सोच करके ब्रज में आना नहीं चाहते हैं। यही डर बहुरी ने गोकुल आए। श्री सूरदास जी ने लिखा है भ्रमर गीत में कि अरे सखी इसी डर से श्याम सुंदर नहीं आए कि फिर गोपियां चोर चोर कहेंगी और नाचने को कहेंगी, रासलीला में नचा करके थका देंगी। और माता जसोदा को छड़ी दे रही थी पिटने के लिए या रस्सी बांधने के लिए, शायद यही सोच करके श्याम सुंदर नहीं आते हैं। और फिर उनको हम लोग गाय चराने के लिए भेजेंगे। आधी रात के समय ही बच्चे पहुंच जाते थे और कहते थे कन्हैया कन्हैया चलो भोर हो गया भोर हो गया। अब उनको रात काल जैसी लगती थी, यही चाहते थे कि श्री कृष्ण के साथ हम हमेशा खेलें। तो गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण को याद आती होगी मथुरा में कि वृंदावन में तो मुझे मन भर करके नींद भी कभी नहीं मिली। एक तो बच्चे आधी रात को आकर के जगाते थे कि चलो चलो वृंदावन गाय चराने, और दूसरे गोपियां रासलीला में नचाती थी, हमको कभी चैन नहीं मिला, इसलिए भूल कर वृंदावन नहीं जाऊंगा। ये गोपियां सोच रही है, कल्पना कर रही है, इसी से वे नहीं आ रहे हैं। तो उसने एक लीला यह भी स्मरण कर रही है कि हम लोगों ने जो रस्सी दिया था माँ जसोदा को बहुत गलती किया था। और राधा रानी उद्धव जी से कह रही हैं कि आप प्रियतम से जाकर कह दीजिएगा कि मैंने जो गलती किया है अब नहीं करूंगी, अब अपना श्रृंगार नहीं करवाऊंगी, अब अपने पैर में महावर लगाने को नहीं कहूंगी। इस तरह से सोच रही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जमुना के तट पर अधिक देर तक बैठिए और श्रृंगार वट के पास हमारा श्रृंगार कीजिए, और ये कह दीजिएगा कि राधा ने कहा है कि अब भूल करके भी मान नहीं करूंगी, अब नहीं रूठूंगी कभी भी, आपको मान मनाने में बड़ा परिश्रम पड़ता था, इसी भय से नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं नहीं रूठूंगी, अब श्रृंगार नहीं कराऊंगी, अब रासलीला में नाचने को नहीं कहूंगी। इस प्रकार से गोपियां कह रही। तो मैं ये बात कह रहा था कि भगवान का जो शरीर देखने में छोटा लगता है वास्तव में विभू है। विभू का अर्थ है कि उसको देश और काल की सीमा में नापा नहीं जा सकता है। हम लोग गीता में पढ़ते हैं अर्जुन कहे कि हे प्रभु हम आपका ऐश्वर्य रूप देखना चाहते हैं, तो भगवान रथ पर खड़े हैं और कहते हैं मम देह गुडा के सज चान्य मत दृष्टमिच्छसी, हे अर्जुन जो कुछ देखना चाहते हो मेरे देह में देखो। और भगवान के उसी देह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, सारे देवता असुर नाग मनुष्य सब कुछ भगवान के देह में। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह एक नाम मात्र के लिए काल्पनिक चीज है और कोई जादू है, वास्तव में भगवान के भीतर सब कुछ है। वो देखने में लग रहा है कि वो परिच्छिन्न है, छोटा है, लेकिन वो छोटा नहीं है, वह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारा मन नहीं पहुंच सकता कि कितना बड़ा है, सीमा में नाप नहीं सकते, लेकिन फिर भी माँ के गोद में पड़ा हुआ है, अर्जुन के रथ पर है। यह एक अद्भुत बात, कहीं भी भगवान के विराट रूप को कोई देखा है तो भगवान के भीतर ही देखा है। माँ जसोदा ने श्री कृष्ण के मुख में देखा विराट, दो बार विराट रूप भगवान ने दिखाया। एक बार तो वो दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते ऐसे गोद में लिए रही तो श्री कृष्ण को धीरे धीरे नींद आने लगी, श्री कृष्ण को नींद आने लगी। तो उस दिन से माँ बहुत चिंतित थी कि श्री कृष्ण एकाएक भारी क्यों लगने लगा, क्यों शरीर का वजन बढ़ गया। एक दिन तो ऐसा वजन बढ़ गया था कि लगता था कि कई टन गोद में उठा ली तो रख दी थी जमीन पर। उसी दिन तृणावर्त का वध किए थे भगवान, माँ के गोद से गए थे। तो उसके बाद वो बहुत चिंता में रहती थी कि हमारे पुत्र के शरीर में क्या गड़बड़ी हो गई है। और भाई ये किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लो हो चाहे हाई हो, वो तो कुछ स्वाभाविक है, लेकिन वजन ही एकाएक 100 किलो बढ़ जाए तो ये तो बहुत खराबी मानी जाएगी। और जहां तक है आदमी वजन कम कराता है ना, बढ़ाना नहीं चाहता है। और यहाँ तो अकस्मात वजन बहुत भारी हो गया। तो माँ जसोदा बहुत चिंता में रहती थी कि बच्चे में कोई रोग हो जाता है, क्या होता है। तो भगवान ने सोचा कि माँ के संशय का निवारण करना चाहिए, मैं क्यों भारी हूँ जरा दिखा दूँ। तो भगवान दूध पी करके थोड़ी थोड़ी जम्हाई लेने लगे, सोने लगे, और सोए तो थोड़ा सा मुख खोला तो उसमें वो देखने लगी गोद में लिए लिए। कृष्ण का शरीर माँ के गोद में है, हाथ में है, और मुख में सारा ब्रह्मांड देखने लगे। और मुख कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं था, छोटा मुख, सुंदर मुख, छोटे छोटे दांत, और उसी में देखने लगी कि सब कुछ है। वो ध्यान से देखने लगी, उसी में गिरिराज गोवर्धन, मानसी गंगा, वृंदावन, मथुरा, और इसके साथ ही साथ सारा तारा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, सब कुछ इसके भी। तो ये देख करके वो समाधान उसका नहीं हुआ, वो और डर गए कि हे भगवान मैं क्या देख रही हूँ, कोई मेरे बेटा को भूत लग गया, क्या हुआ। और वो ऐसा करते करते फिर भय के मारे आंख बंद कर ली, देख करके भय हो रहा था, और पुत्र के मुख में ये सारा जाल देखने लगे तो भय हो गया, तो आंखें बंद कर ली। आंख बंद करके इसके बाद खोल करके देखी तो कुछ भी नहीं था, सुंदर सुंदर बच्चा सो रहा है, तो उसको सुला करके घर का काम करने लगे। और दूसरी बार माँ को विराट रूप दिखाया कृष्ण ने, जब वो माटी खा लिए थे, माटी उगलने के लिए कह रहे थे, तो श्री कृष्ण से कही कि मुंह खोलो देखो कि माटी खाया हो कि नहीं, माटी खाया होगा तो कुछ मृतिका दांतों में लगी हुई होगी। लेकिन श्री कृष्ण इतना जल्दी जल्दी लार बना करके घोट गए थे कि माँ दांतों में नहीं देख पाई, लेकिन मुंह खोलने के लिए कहा तो जब श्री कृष्ण मुंह खोले तो छोटे शरीर वाले थे, माँ का बड़ा शरीर था, ऐसे खोल रहे, खोलो मुख। तो जब मुंह खोले माँ देखती है तो देखती है पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, सारे देवता, सब कुछ। और उस बार स्पेशल उसने एक देखा कि एक जसोदा अपने कृष्ण को डांट रही है भीतर देखने लगी। यह देख करके तो घबरा गई वो भीतर नंद महाराज को देखी, ब्रज को देखी, गौओं को, गिरिराज जी को, सब कुछ को भीतर देख करके तो एकदम घबरा गई, थर थर कांपने लगी, ऐसा लिखा गया है। और सोचने लगी कि क्या है ये, ईश्वर की कोई माया है, क्या है ये, बच्चे की विशेषता है, कोई ग्रह लग रहा है, कोई प्रेत लग रहा है, कि मेरा बुद्धि भ्रम है। अब वो बच्चे को छोड़ छाड़ करके जा करके भगवान नारायण के, लक्ष्मी नारायण के जो घर के देवता थे, प्रणाम कर करके लगी कहने, हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, हमारे बच्चे में ये सब क्या हो रहा है, आप रक्षा कीजिए। इसको रोग मान रही थी, इसको ग्रह है या भूत प्रेत मान रही थी। इस तरह से माँ की ये विशेषता, कितना भी भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते थे, मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, लेकिन वो उसको बुद्धि भ्रम मानती थी कि हमारा कोई बुद्धि भ्रम है, कुछ रोग है शरीर में, तब तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और हम लोग हैं, मान लीजिए हमारे शरीर में अकस्मात कोई टेलीविजन देखने लगे वो तो भीतर दिखाई देने लगे, कुछ चिंता की बात हो, थोड़ा सा बात पित्त कफ में अनबैलेंस्ड हो जाता है तो घबराने लगता है चित्त। तो इतनी इतनी चीजें जिस बच्चे के शरीर में माँ देखे तो क्यों नहीं घबराएगी, विराट रूप दिखाए थे। तो आप जरा विचार कीजिए, वो छोटा सा शरीर, उसमें सारा ब्रह्मांड कैसे है, और वो सत्य है। बारंबार शास्त्रों में वर्णन किया गया है, बारंबार भगवान ऐसा दिखा रहे हैं, यह है श्री कृष्ण का स्वरूप। उनका शरीर विभू है, चिद विभू है, चिद का अर्थ पूर्ण स्पिरिचुअल और अनंत है, सर्वव्यापी है, उसी के भीतर सब कुछ है, परंतु कुछ भी उसके भीतर नहीं है, यह अभी शास्त्र वर्णन करता है। भगवान के स्पिरिचुअल शरीर के भीतर मैटेरियल कुछ भी नहीं है, और भगवान के शरीर में न तो रक्त है, न मांस है, न हड्डी है, न मज्जा है, न चर्म, कुछ भी नहीं है। भगवान के शरीर में केवल भगवान है, मतलब केवल आनंद घन है। हम लोगों के शरीर में बहुत भेद है, ऊपर चमड़ा है, भीतर मांस है, हड्डी है, फिर हड्डियों के बीच बीच में मज्जा है, मांस के बीच में मेद है जो तेल जैसा रहता है। दो प्रकार की चर्बी है, मांस में जो चर्बी है वो अलग, उसको मेद कहते हैं, और अस्थि के भीतर हड्डियों में जो चर्बी रहता है उसको मज्जा कहते हैं। फिर भीतर तांत है, फिर मल मूत्र है, रक्त है, कई प्रकार से शरीर भरा पड़ा है, और ये सब चीज प्राकृत है, और प्राकृत ही नहीं है, वास्तव में ये सब घृणित है, एक से एक दूषित चीजें शरीर में भरी पड़ी। लेकिन भगवान का श्री विग्रह नख से सिख तक केवल चिन्मय है, आनंदमय है। जैसे किसी मिस्त्री के बहुत बड़े ढोका को पिघला करके आदमी बना दिया जाए, बहुत बड़े चट्टान को पिघला करके और आदमी का रूप दिया जाए, बांसुरी बना दिया जाए, और मिश्री का ही मोरपंख हो, मिश्री का बांसुरी, मिश्री की अंगुली, मिश्री का कान, सब कुछ। तो खैर यह उपमा हम केवल एक पक्ष को पोषने के लिए दे रहे हैं, मिश्री तो क्षणभंगुर है, वह भी प्राकृत है, लेकिन एक बात के लिए कि नख हो चाहे सिर हो, चाहे कान हो चाहे नाक हो, चाहे बांसुरी है चाहे मोरपंख है, चाहे माला है चाहे कुछ भी है, वहाँ क्या है, केवल मिश्री है। भगवान शरीर में केवल आनंद है, और वह आनंद कैसा है, चिन्मय है, ज्ञानमय है और नित्य है, इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। वास्तव में आनंद के का विशेषण है सत और चित्त। भगवान आनंद घन है, लेकिन वो आनंद कैसे हैं, सत है और चित्त है, सच्चिदानंद है, बारम्बार वर्णन किया जाता है। तो भगवान का सब देखने में मनुष्य चल रहा है, लेकिन वे तो चित्त विभू है, सर्वव्यापी है, पूर्ण चिन्मय है भगवान का शरीर, चित्तमय, चेतनामय और आनंदमय। और जीवों का जो शरीर है वो अचित है, जड़ है, माया के द्वारा दिया हुआ है, और पूर्ण दुखमय है। यह शरीर दुख देने के लिए मिला है, पूर्ण दुख है। ऐसे कोई यह सोचे कि हमको कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता लगी रहती है, शरीर बहुत दुख देने वाला है आत्मा को, कहीं थोड़ा कट जाए तो आत्मा हाय हाय करता है, कहीं कट जाए, कहीं ताप हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, भूख लग जाए, प्यास लग जाए, ठोकर लग जाए, तो आत्मा होता है, तो शरीर दुख दे रहा है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है उसमें शरीर शरीर का भेद नहीं है, वो चिद विभु भगवान है, इनमें, और वही प्रभु चाहे देवकी के गर्भ से जन्मे, चाहे अदिति के गर्भ से जन्म ले, चाहे भूति गर्भ से जन्म ले, सेम पुरुष सेम श्री स्वरूप से प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जन्म लेने की वे लीला करते हैं, जिससे माँ के हृदय स्नेह का पोषण हो। सचमुच के जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके स्तनों में दूध बनने लगता है, दूध पिलाती, किंतु वास्तव में जैसे दूसरे शिशु जन्म लेते हैं भगवान उस तरह से जन्म नहीं लेते। और जैसे जीव माया के वश में होकर कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, ऊपर से फोर्स्ड हैं कर्म करने के लिए, भगवान इस तरह कर्म नहीं करते। भगवान जीवों के हित के लिए और अपने स्वरूप में होकर आनंदमय कर्म करते हैं, कुछ भी जो भी बनाते हैं भी करते हैं तो उसमें वे आनंद होते हैं, और कभी भी संकट में और चिंता में नहीं पड़ते। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति यदि एक छोटा सा ही परिवार बनाता है तो कितना चिंता करता रहता है परिवार, और भगवान इतनी बड़ी दुनिया बनाकर जब समुद्र में सोते हैं उनको कोई चिंता नहीं। हम देखिए भगवान को चिंता नहीं कि कैसे चलेगा, सब चलता है, उसे रिमोट कंट्रोल से चला है, सब चलता रहता है, भगवान को कोई चिंता नहीं होती। और यहाँ पर कौन चिंता में नहीं है, भले कोई देश की चिंता कर रहा है, कोई गांव की चिंता कर रहा है, कोई परिवार की, कोई अपनी चिंता में लगा हुआ, लेकिन सब चिंता में है, दुख है। कर्म करते हैं सुख के लिए मिलता है दुख, लेकिन भगवान भी कर्म करते हैं, लेकिन किसी कर्म से क्या वे कभी दुख का हो करते हैं, कभी नहीं। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंद घन है, उनके कर्म भी आनंदमय है, तो उनके कर्मों को गाता है सुनता है तो वह भी कर्म बंधन से दुख से मुक्त हो जाता है। यह विशेषता है भगवान की। भगवान के इस शुभ जन्म के अवसर पर भगवत तत्व का हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे गुरु वंदना में कहा जाता है कि कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते, ऐसा मत समझिए कि गुरु इन कृपा करके और कृष्ण को कहीं से उठा करके दे देता है। कृष्ण को गुरु या कोई वैष्णव देता है तो वही भागवत के शब्द पर ही देता है। जब कोई व्यक्ति सुनता तो उस हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति होती, धीरे 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 कृष्ण को समझ जाता है, आत्मसात कर लेता है। या इसी तरह से कृष्ण प्राप्ति होती है। आजकल के लोगों के मन बहुत भारी भ्रम होता है कि गुरु कृपा करेंगे और कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएंगे, कोई शक्तिपात कर देंगे, शक्ति संचार करेंगे। ऐसे शक्तिपात आदि कुछ चीज नहीं है, श्रवण कीर्तन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, अपने आप भगवान हृदय में आते हैं। भागवत में प्रश्न किया गया है भगवान किसके हृदय में आते हैं, कहा गया है श्रवण कीर्तन करने वालों के हृदय में भगवान आते हैं। किस द्वार से आते हैं, कान के रास्ते से आते हैं, प्रविष्ट कर्ण अंधे, भगवान के आने का दरवाजा भी कान है, इसी हेतु से भगवान प्रवेश करते हैं और हृदय में आकर हृदय की गंदगी को सद के लिए दूर कर देते हैं। तो वास्तव में जन्माष्टमी मनाने का सबसे बेस्ट प्रोसेस का है कि भगवान के विषय में खूब गाया जाए और खूब सुना जाए, और शरीर में शक्ति हो तो खूब नाचा जाए। ये तीन प्रोसेस, सुनना, गाना, नाचना, और बाद में जब व्रत पूरा हो तो खाना, प्रसाद पाना भगवान। ये हनुमान खुशी में नाच रहे ऊपर, वैसे भी हनुमान जी ऊपर रहते हैं, भगवान के भी ऊपर, अर्जुन के झंडा पर रहते हैं, अर्जुन के रथ पर रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है भगवान राम के स्वभाव का, कहते हैं भगवान कितना शील निधान है, कितना सुंदर स्वभाव है, प्रभु तर उतर कपिडार पर। भगवान जब किसी वृक्ष के नीचे बैठते थे वन में तो वानर सब झूलते रहते थे ऊपर शाखा में इधर उधर, तो वानरों का स्वभाव है वृक्ष ऊपर में। लेकिन भगवान श्याम कभी भी नहीं कहे ये नीचे बैठो, ऐसा कभी नहीं कहे। भगवान के सिर के ऊपर वृक्ष पर वो खेल जाते थे, किलकारियां करते थे, लेकिन फिर भगवान राम कभी उनको मना नहीं। तुलसी कौन रमसो साहिब सिल निधान, कौन ऐसा स्वामी होगा जो सेवकों को ऊपर वृक्ष पर छोड़ा, ठीक है खेलो कपा के ऊपर हो, कोई मना नहीं किए और अपने वृक्ष के नीचे बैठते थे। ये भगवान का स्वभाव, बानर सब ऊपर रह रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान के जन्मोत्सव में भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो इस तरह यह जन्माष्टमी आती है, एक बार हमें श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करती है, यह दिन यह काल हमको जोड़ता है। तो यहाँ पर यह श्रीमद् भागवतम का सत्र पूरा किया गया। कोई कार्य आज के युग में निर्विघ्न होता है तो उसी सफल माना जाता है, चाहे जैसा भी हुआ। वास्तव इतनी बाधा है, इतना दुख है संसार में कि कोई कार्य पूरा हो जाता है तो बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। एक बार मैं सागर में भागवत कथा कहा तो चार दिन कथा बीत गई तो वहां के जो श्रोता थे डॉक्टर साहब ओम प्रकाश गुरु, तो वे कहते हैं चार दिन कोई बाधा नहीं आई। तो मैं सोचने लगा ये क्या कह रहे हैं, पांच दिन तक का पूरी हो गई कोई बाधा नहीं आई। तो मैं कहा कि अभी तो तीन दिन बाकी है ना, तो चार दिन पूरी हो गए तो आपको क्या आश्चर्य हो रहा है। तो वे कहे अरे महाराज एक दिन की कथा निर्विघ्न पूरी हो जाए ये बहुत बड़ी सफलता है, इस संसार में इतनी बाधा है, यहाँ तो लोग सात दिन पूरा किए और बिना किसी बाधा के आनंद के साथ पूरा किए। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, यह वृंदावन धाम की कृपा है और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, समस्त वैष्णवों की कृपा है। वास्तव में एक निर्विघ्न सुनने का अवसर मिला या बोलने का अवसर मिला, यह बड़ी बात है। किसी की सात दिन के अंदर मृत्यु नहीं हुई, यह एक सफलता मानी जाती है। नैमिषारण्य के ऋषि लोग जब कथा सुनने के लिए तैयार हुए तो सबको मारने वाले जमराज जी को ही लाकर कथा में बैठा दिए थे, तो मारने का काम बंद था, तो जमराज जी का ऑफिस टोटल बंद करा दिए थे। एक प्रकार ये ट्रिक था ऋषियों का, ये कहते हैं, तार कहते जाइए तो सूत जी ने कहा कि अरे भाई किसी को कोई रोग होगा, किसी का मरण हो सकता है, तो कैसे कहते जाए, वो भी तो देखना चाहिए कौन बीमार है, क्या है, कैसे। चलो कहते हैं नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, जब तक जमराज जी यहाँ हैं तब तक किसी प्राणी की मृत्यु नहीं होगी, और उनको हम लोगों ने यहाँ बैठा लिया है कथा, और वो कथा सुनने में लगे हुए हैं, मारने का काम बंद है, कोई नहीं मरेगा। तो कथा में ये मनाया जाता है, ये लिखा गया सप्ताह के शुरू में पूजन किया जाता है देवताओं जी का, कोई विघ्न न हो, कोई कुछ न हो, निर्विघ्नता किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह सत्र पूरा हुआ, राधा रानी की कृपा से। कोई बाधा नहीं आई, कोई कमी नहीं, या नहीं कहा जा सकता है, कमी तो कुछ रह जाती है, वह वक्ता की ओर से कुछ न कुछ कमी हो जाती है। हम तो अपने विषय में देखते हैं कि हम कितना भी सावधान रहते हैं कि ये बात नहीं बोलेंगे, बात नहीं बोलेंगे, लेकिन स्वभाव विजयी होता है, कुछ न कुछ कठोर बात जरूर निकल जाती है। तो आप सज्जन का यह कर्तव्य है, आप लोग भागवत के श्लोक को ग्रहण कर लीजिएगा, और हमारी बात जो कठोर होगी उसको यही इसी पंडाल में छोड़ दिया, इसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, अर्थात क्षमा कीजिएगा, कोई भी कठोर बात निकली हो तो, और भगवान की बातों को ग्रहण करना चाहिए, नारद जी की और ईश्वरों की और श्रील सुखदेव गोस्वामी की, वे लोग जो कुछ भी बोले हैं हम तो पसते हैं कि उन्हीं की बात कहें, दूसरी बात न साने। फिर कभी कभी अपने कार प्रबल है, वो कुछ विजय हो जाता है, किसी कटाक्ष हो जाता है, किसी की निंदा हो जाती है, उसको छोड़ देना चाहिए। संत हंस गुरह ही पाए पर यह बारी विकार, साधु हंस की तरह होते हैं, जैसे हंस है पानी मिले हुए दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, साधु लोग किसी के दुर्वचन को छोड़ देते हैं और भगवत लीला परक्ष वचन को ग्रहण करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान श्री कृष्ण से कामना है कि वे
दिया। हम श्रीपाद राधा गोविंद महाराज के संपर्क में हो करके और 65 से पहले ही करीब करीब भगवान के प्रति कुछ आकृष्ट जैसा हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण में हम हमारी प्रीति थी, उन्हीं को परम मानते थे, लेकिन हम जो गीता पढ़ते थे उससे इस बात की पूरी पूरी पुष्टि नहीं होती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे महान है, और फिर भी हमारे दूसरे लोगों की बातों को सुनकर श्रद्धा थी कि भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए और वही सबसे परम तत्व महान है। बड़े बड़े भक्त भाई चैतन्य महाप्रभु और रामजा राज आदि महान भक्त हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, सब भक्तों ने भगवान से भक्ति ही क्या है और सबसे बड़ी चीज भक्ति ही है, इस बात को जानते श्रद्धा भी हम चाहते भी थे। लेकिन जब गीता हम पढ़ते थे तो उसमें परम ब्रह्म परमात्मा निराकार बात ऐसे गीता प्रेस की खास गीता से, तो उसे यही लगता था कि नहीं कृष्ण ही परम है, परम है, ये भी नहीं था कि नहीं वो बात में, लेकिन इस प्रकार से दृढ़ विश्वास के लिए पुष्टि नहीं मिल पाती थी, जैसे देखने में आता था, जैसे लोग कहते थे वैसे नहीं मिल पाता था, इसलिए कि गीता से और एक तरह से गीता से हम लोगों को एक तरह से अलगाव और नफरत जैसा ही हो रहा था, क्योंकि इसमें आत्मा को ही या निराकार ब्रह्म को ही लगता था कि प्रधानता दी गई है, लेकिन दैव जो से जब हम करीब 70-71 समय आया वृंदावन में तो देखा कि समय नहीं ठीक से याद पड़ रहा, देखा कि प्रभुपाद के साथ देश के 200 की मात्रा में देशी भक्त आए हैं और जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, देखा लाल वस्त्र पहने हुए और अब जमुना जी में कूद कूद करके लगे स्नान करने और खूब भगवान का नाम लेते हुए, देख करके खुश हो गया। और इसके बाद हम प्रभुपाद जी के यहाँ जो है उसमें आए मिलने के लिए, तो उस समय मिल रहे थे तो प्रभुपाद जी के पास दूर सेठ बैठे हुए थे, वो लोग कुछ बातचीत सत्संग रहे थे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी ने चरण उनको उपदेश दिया कि स्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सम्रह अहम पर पापे दो शिष्यामी मा सुचा, कृष्ण कहता है, प्रभुपाद जी का कृष्ण कहता है कि सब धर्मों को छोड़ करके तुम लोग हमारी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। से कृष्ण हमारा काम है कि हम भजन करें और कृष्ण का काम है पापों को दूर करना, शुद्ध करना हमारा। तो हम लोगों को भजन ही करना, प्रभुपाद जी कह रहे थे। तो सेठ प्रश्न फिर प्रभुपाद जी, हम सुनते हैं कि भगवान को छल कपट नहीं आता है, मोहि कपट छल चित्र न भाव निर्मल जन सज्जन मोहि, इसी आधार बोल रहे थे कि भगवान के सत्ता हम भगवान की भक्ति शुद्ध होकर के करें कि ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही करें। तो फिर उपाय ने जोड़कर कहा कि नहीं, जो श्लोक कह रहा है कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा काम है कि हमें शरण में आओ और मेरा भजन करो और वह मेरा काम है, हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, वो तुम्हारा काम है, मेरा काम है शुद्ध करना। तो तुम जैसे हो जिस स्थिति में हो उस स्थिति में हम लोगों का काम है कृष्ण का भजन करना, शरण में होना, और कृष्ण का काम है कि हमको शुद्ध करना। तो भगवान है वो अपने काम को करे, इस चिंता में नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सुन रहा था इस बात को, उतनी बात मैं सुना और हमारे जीव पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा, अपने बहुत भारी संबल मालूम पड़ा। हम लोग युवक थे और न्याय अनुभव कर रहे थे कि कैसे हम लोग ब्रह्मचारी रह करके भगवान का भजन करेंगे, कैसे जीवन बीतेगा धर्मपूर्वक सत्य। लेकिन प्रभुपाद जी विज्ञान दिया, उनकी बात कहा कि कृष्ण का काम है शुद्ध करना, हमें तो उनके शरण में जाना चाहिए। इसके बाद मेरे जी ने वो घर करी बात और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता जो लिखा है उसको हम शुरू से अंत तक पढ़े। पढ़ने के बाद तो मुझे कि हाँ मत्त हतम नान्यत किं दस्ति धनंजय, भगवान बढ़ करके और उनसे अलग दूसरा कोई सूर्य तत्व नहीं, इस बात पर आ गई हमारे। और फिर शास्त्र में जो जहाँ कहीं भी संदेह जनक मन पड़ रहा था सब जगह स्वस्पष्ट दिखाई देने लगा, नहीं नहीं कृष्ण ही परम भगवान है, फिर आप कम किम तत्व हम जाने। तुम सुदन सरस्वती जी का लिखा हुआ है गीता के भूमिका में वह निश्चय सही है, सही सही। और हम रियलाइज किए खान जी मुसलमान थे, ये लोग कैसे किस तरह से कृष्ण में आसक्त और भक्त हो गए। तो इस विषय में शास्त्रों की प्रामाणिकता और भगवान की भगवता को प्रभुपाद जी ने सारे संसार में स्थापित किया। और उस समय ऐसा था कि गीता की व्याख्या लोगों को ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने गीता सब शास्त्राणि कुर्वन्ति शास्त्राणि, जो भक्त के विषय में कहा गया है कि उसके जन्म से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, वह तीर्थों को तीर्थ बना देता है और सत्शास्त्र को सत्शास्त्र बना देता है। तो ये बात हम प्रभुपाद जी के आचरण से बिल्कुल प्रत्यक्ष किए, अनुभव किए कि सही में प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का उद्धार कर दिया और वो जिस रूप में था उस रूप में सारे दुनिया को दिखने लगा। गीता तो अपने रूप में था लेकिन उसको व्याख्याओं के चलते वह धूमिल हो गया था, उसमें वह प्रभाव और तेज नहीं था। लेकिन प्रभुपाद गंदगी के तो दर्पण मार्जनम जैसे है, उसके बाद गीता को साफ कर दिया। सशास्त्री कुर्वन्ति शास्त्र, शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं भगवान के भक्त। तो प्रभुपाद जी ऐसे महान पुरुष थे, ऐसे महान कृष्ण के भक्त थे। हम जैसे राधारमण जी ने बतलाया कि प्रभुपाद जी जब बच्चे थे तो उनके पिताजी वैष्णव से प्रार्थना करते थे कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा राधा कृष्ण श्रीमती राधा रानी का परम विशुद्ध भक्त हो गए। तो ये तो प्रभुपाद जी ऐसे महान विभूति थे, ऐसे वैष्णव ऐसे पिता के घर में जन्म, यही होनहार विरहान के होत चीखने पात, जो महान पुरुष हैं महान विभूति हैं उनका ऐसे वैष्णवों के घर में, ये तद ही दुर्लभ तरम जन्म लोके जन्म दृष्टाम, इस प्रकार का जन्म दुर्लभ है। तो ऐसे महान वैष्णव के घर में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ और ये काम वास्तव में कृष्ण प्रस्थाय भूतले सामान्य आदमी का नहीं हो सकता है। जो कृष्ण के द्वारा इस संसार में जो कृष्ण के प्रेष्ठ हैं, अत्यंत प्रिय हैं, चाहे कृष्ण पे कृष्ण, जिनको कृष्ण ने इस संसार में भेजा है कि जाओ वहां के जीवों का उद्धार करो, हम लोग पठाते हैं लोग जाओ ये काम करो। पर प्रभुपाद जी को भगवान ने ही ये भेजा था कि इस युग में, इस भ्रांत युग में लोग कृष्ण को समझ सके, शास्त्रों को समझ सके। तो प्रभुपाद जी का इस संसार पर अमित उपकार है। मैं थोड़े से कहा और भी भक्त लोग बोलने वाले हैं, बहुत समय लिया। तो मैं अब समाप्त करना चाहता हूँ, ठीक है।
बापू और मेरी बाणी, तो हम लोग कई वरिष्ठ भक्त यहाँ है जो कि प्रभुपाद जी की बापू के संग किए हैं, पर हम लोग तो इतने नहीं है ताकि उनके बाणी की संग किए हैं। तो जो एक दो बात मैं जानता हूँ वही मैं बताना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत में हम लोग पढ़ते हैं कि जब राय रामानंद से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सबसे बड़ा जस क्या है, तो राय रामानंद ने तुरंत उत्तर दिए थे कि कृष्ण भक्त के रूप में जो जस है वो सबसे बड़ा है। अर्थात संसार में सबसे बड़ा जस अगर है वो है कृष्ण भक्त के रूप में हमारी जस फैला। तो हम जैसे भक्त लोग बीच में बैठ करके कभी कभी ऐसे इस बात पर चर्चा करते हैं कि वास्तविक कि प्रभुपाद जी से बढ़कर कोई जस के अधिकारी संसार में नहीं है। आज आप लोग देखिए इस्कॉन संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की प्रतिष्ठा प्रभुपाद जी ने जब से किया 1966 से, तो तब पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ऐसा कोई देश नहीं जहां पर कि प्रभुपाद के नाम पर जस नहीं है। पूर्व में जापान है, जापान से लेकर के पश्चिम अमेरिका तक इसके बीच में जितने देश आए हैं, जापान है, चाइना है, बर्मा है, इंडिया है, और इसके बाद फिर फ्रांस, इटली लेकर के अमेरिका तक, हर जगह में हर पल में प्रभुपाद जी के नाम पर जस गान। और प्रति समय में ऐसी नहीं है, हर समय पर मंगल आरती हो रही है प्रति मंदिर में, और मंगल आरती होते समय नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी ने बिना। तो इसी से पता चलता है, भक्त लोग इसमें अंदाजा लगा सकते हैं वास्तविक ऐसा कौन महात्मा है जिसके जस संसार में प्रति कोने में और हर पल में गाया जाता है। और भगवान कृष्ण, भगवान रामानंद राय के मुख से प्रतिपादित कर लिया, वास्तविक कृष्ण भक्त के रूप में प्रभुपाद ही प्रकृत जस के अधिकारी है। तो दूसरी बात यह है, मैं एक बार महाराज से सुना था वहां मायापुर में, जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो विदेशों में जाकर के जब प्रचार कर रहे थे, तो लोगों की, विदेशी भक्तों का कुछ आइडिया था कि कुछ भारतीय साधु आते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को ऐसे कहते थे, ठीक है स्वामी जी, कितने पाउंड चाहिए, कितने डॉलर चाहिए, आप ले लीजिए, आपकी इसलिए तो आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको साफ साफ बोला, देखो मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, आप लोग बहुत दिन, करीब 200 साल तक भारत में शासन किए, भारत को अपनी कब्जे में रखे थे, पर सबसे जो महामूल्य मणि है भारत माता की गर्भ में है, आप लोगों के लिए उसका कोई ठिकाना नहीं था, आप लोग उसको नहीं पता लग पाए, तो उस चीज को मैं लेकर के आया हूँ। तो वो लोगों के मन में शंका हो गया, वास्तविक ऐसा कौन सा चीज है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर में नहीं आया था। ऐसा आप लोग सुने होंगे, कोहिनूर हीरा ले गए, मयूर सिंहासन ले गए, कई कई प्रकार चीज ले गए जिसके वजह से भारत तो हमेशा हमेशा के लिए दरिद्र हो गया। तो जब प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा एक अनमोल चीज है आप लोगों को पता नहीं और मैं तुमको ये सारी चीज देने आए हूँ, तो वो लोग हतभंब हो गए, वो लोग विस्मित हो गए, कौन सा ऐसा चीज है प्रभुपाद आप देने आए हैं। तो प्रभुपाद उनको भगवत गीता यथारूप दिखाए और भगवत ग्रंथ दिखाए, बोले यही चीज के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ये जो अनमोल खजाना इसमें है, भारत की जो प्रकृत ज्ञान की भंडार है, तुम लोगों को ये पता नहीं था, और इसी चीज को मैं तुमको देने आया हूँ। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत ही प्रचार किए, और उनके ग्रंथ की जो विस्तार वितरण है, वास्तविक पृथ्वी में सबसे बड़ी दान है। इस ग्रंथ के वजह से हम लोग आए हैं, जिसे श्याम सुंदर प्रभु ने बताया अपने जीवन में बहुत प्रिय गीता अध्ययन किए थे, इसलिए हम लोग को भी हमारे जीवन में बहुत कुछ गीता अध्ययन किए थे। पर वास्तविक प्रभुपाद जी की जो तीर है भगवान कृष्ण की चरण कमलों में जिस प्रकार की भेद किया है कि भगवान ही कृष्ण है और उनकी भक्ति करना है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ पुरुषत्व है, इसी प्रकार की जो चरम सिद्धांत और किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता। तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसे भक्त और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ की जो विशेषता है ये संसार में विरल है। तो हमारे भक्तों से निवेदन है, अगर हम प्रभुपाद जी के सही अनुयायी हो तो हमको ऐसी काम करना चाहिए ताकि हमारी जो उत्तराधिकारी, हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है ये पूरा हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार विदेश गए थे कुछ देने के लिए, लेने के लिए नहीं है, जैसे कल महाराज बता रहे थे साधु की स्वभाव हो तो कुछ देना है, ऐसे साधु के व्यतिरिक्त और सब व्यक्ति कुछ कुछ लेना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पर जाकर के एक बहुत सुख स्थिति में उनको बोले कि ठीक है मैं तुम्हें देने आया हूँ, अगर हम प्रभुपाद जी के सही दायाद हो, उत्तराधिकारी हो, तो हमको भी उनके ही आदर्श पर चलना चाहिए ताकि हम सारी दुनिया में देते रहे, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रचार करते रहे और प्रभुपाद जी के स्वप्नों को साकार बनाए। हरे कृष्ण। उसने उनको आदेश किए थे कि पाश्चात्य जगत में चैतन्य महाप्रभु के वाणी को प्रचार करो, आप शिक्षित युवक है, और सीधा ये उपदेश ये आदेश उनको दिए थे। और प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि मैं इस आदेश को बहुत लेट में पालन किया, बोलते हैं 1970 साल, जब मैं 70 साल का उम्र हुआ लगभग 35 साल के बाद उसको उन्होंने साकार करने के लिए जा रहे हैं, और ये 35 साल उन्होंने इस गुरु वाक्य को, जो गुरु जी का उनका आदेश था, उसको पालन करने के लिए अपने इच्छा से कई प्रकार प्रयास किए थे। गौरांग महाप्रभु के वाणी का प्रचार करना है, और उनको भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोले थे कि सीधा सीधा विदेश जाकर प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने तभी सोचते थे विदेश जाऊंगा प्रचार करूंगा, तो प्रभुपाद जी ने तभी गृहस्थ थे, नवजीवक थे, वो बताते थे कि एक्चुअली जो आचार्य जो गुरु होते हैं उनको उनके जन्मतिथि पर इसे इस प्रकार पूजा करना चाहिए, व्यास पूजा करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने आपने प्रणाम मंत्र खुद बनाकर उनको सिखाए, बोले इस प्रणाम मंत्र मुझे प्रणाम करो, उनको प्रणाम करना भी नहीं आता था, दंडवत करना भी नहीं आता था उन लोग, तो उनको दंडवत करके सिखाए, ऐसे दंडवत करो, ऐसे मंत्र बोलो, ऐसे मेरे लिए बनाकर लाके मुझे माला पहनाओ, मुझे भोग दो, ऐसे सिखाते थे। पहले दिन प्रभुपाद जी का जो व्यास पूजा था नंदोत्सव के दिन, उन्होंने बहुत सिखाया तो उन्होंने किया, लेकिन वो सब गड़बड़ हो गया। तो फिर दूसरे दिन किए थे, जो प्रभुपाद जी का जो पहले गुरु पूजा हुआ था वो तो पहले दिन फेल होकर फिर दूसरा दिन हुआ था, पहले दिन सब गड़बड़ हो गया, प्रभुपाद जी ने बहुत गाली दी, फिर दूसरे दिन फिर कराया, ऐसे ऐसे सिखाते थे उन्होंने। इतने सिखा करके उन्होंने संस्था स्थापना किए हैं, और बाद में जब परिणत बस में जब भारत आए थे, भारत से जब जा रहे थे, आप तो सब सुने होंगे कि 40 रुपये के साथ जब गए, वो सिंधिया कंपनी का जो मिसेस मोरारजी, उनको तो उनके जो एक ऑफिस के लोग थे उनको ऑफिस में घुसने तक नहीं देते थे, बोलते थे आप विदेश में मरने के लिए जा रहे हैं, इतनी उम्र में तो कोई आते हैं वृंदावन में शरीर छोड़ने के लिए, आप बाहर जाते हैं। कितने प्रभुपाद जी खड़े खड़े रोते थे कि क्या करूंगा अब, और उनको एक मालवाही जहाज में जैसे भेजा गया था, एक समन ढो करके जो जहाज जाता है उसी समन की तरह मालगाड़ी में, गुड्स ट्रेन जैसे जाता है, ऐसे कार्गो शिप में उनको भेजा गया था अमेरिका। तो इसी अवस्था में जा करके
ऐसे जैसे कोई पदार्थ बनाते हैं भोजन का, तो उसमें मसाला अधिक डालते हैं, तो बड़ा सफिशियंट मसाला डालते हैं, हम लोगों की भाषा तो बिना नमक के है। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो हृदय से भगवान परम भक्त का गुण गाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो सोचते थे कि और बोले और बोले और बोले। सुनने में आनंद आ रहा था। और इसका एक कारण और भी है कि हमको सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है, क्योंकि बोलने में इतना ज्यादा टाइम जाता है कि अब सुनाना ही पड़ता है, सुनने का कम अवसर मिलता है। मुझे बहुत आनंद है, वास्तव में मैं अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि वही बोले बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में प्राय सालों भर कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, सबको जानकारी है, लेकिन कभी कभी ऐसे काल आते हैं, मुहूर्त आता है, जिस समय उस मुहूर्त के अनुकूल, उस काल के अनुकूल कुछ कार्य किया जाता है। तो उस दृष्टि से श्रील प्रभुपाद जी के इस पावन आविर्भाव दिवस पर उन परम पूज्य के गुणों का स्मरण करना बहुत बड़ा भाग्य है। तो कई भक्तों ने स्मरण किया और यह भी बहुत अच्छी बात है कि जो जिस भाषा का ज्ञाता है उस भाषा में भी प्रभुपाद जी के गुण मिल रहे हैं। वहाँ इंग्लिश भाषा में इंग्लिश भाषी लोग प्रभुपाद जी के गुणों का आस्वादन कर रहे हैं, यहाँ हिंदी भाषा में हिंदुस्तान के लोग आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी निर्विशेष रूप से सबके हैं। जैसा सार्वभौम जी ने एक बात कहा कि जब ब्रिटिश शासन था यहाँ, तो लोगों पर इतना प्रभाव पड़ गया था कि जिस वस्तु पर ये नहीं लिखा रहता था कि मेड इन इंग्लैंड, तो लोग उस वस्तु को कोई महत्व नहीं देते। लिखा होना चाहिए, बाइसिकल हो, घड़ी हो, कुछ भी हो, अगर मेड इन इंग्लैंड है तो लगता था कि वो वस्तु बैकुंठ से आई है। लोग बहुत चाव से ग्रहण करते थे, चाहे कपड़ा चाहे कुछ भी। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था हुई कि यही की वस्तु, उस पर जब प्रभुपाद जी ने ये छापा मेड इन यूएसए, तब यहाँ के लोगों ने समझा हो तो बहुत उत्कृष्ट चीज है, पर वस्तु थी यही की, पैकिंग केवल वहां की थी, यही की सब चीज है। और उसका प्रमाण ये है कि पहले तो ये प्रचार हुआ कि भाई विदेशी भक्त इतना कर रहे हैं, कर रहे हैं, और उनको देख करके भारत के लोग बहुत प्रभावित हुए, लाइफ मेंबर वगैरह और भक्त के। लेकिन देखिए वो वस्तु वास्तव में यहाँ की है और यहाँ के लोग उसको ज्यादा महत्व दिए। तो आज हम लोग सारे जगत में घूम करके देखते हैं कि भारत के लोग जितना शुद्ध हृदय से चाव से उसको ग्रहण कर रहे हैं, उतना अब उधर के लोग नहीं कर रहे हैं। ये सब सर्वत्र देख रहे हैं। जैसे अभी जन्माष्टमी भी थी, हमने देखा मंदिर में कितनी भीड़ उमड़ रही थी, कितनी भीड़ उमड़ रही थी, और सारे मंदिर भरे पड़े थे, सभी मंदिर भरे पड़े थे, प्रत्येक शहर में बहुत मंदिर भरे पड़े हैं और वहाँ लोग जाते रहते। अभी लंदन में लोग बता रहे थे कि 60,000 लोग आएंगे जन्माष्टमी पर। बॉम्बे के बाद सबसे ज्यादा संख्या वहीं होती है यहाँ पर, और प्राय सब इंडिया के, यहाँ से जानते कृष्ण मेरे। तो हमें वास्तव में यह बताने के लिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे ऋषि मुनियों की बाप की धरोहर है, हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं। इसके लिए जाकर के वहां से इस वस्तु को वहां जाकर पैकिंग बना करके और यहाँ लाइए। तो ये भागवत संस्कृत है, यहाँ की चीज है, गीता यहाँ की चीज है, चैतन्य चरितमृत इसी भी पर लिखा गया। अब देखेंगे कि उधर से एक भी कोई उत्कृष्ट वस्तु नहीं आई है, क्यों वहां है ही नहीं, उधर से कुछ आ ही सकता, जो है ही आएगा, उधर से कंप्यूटर आ सकता है, उधर से और चीज आ सकता है, लेकिन इधर की चीज कितनी उत्कृष्ट है। चैतन्य चरितमृत यहाँ का लिखा हुआ है, वहां प्रिंट होकर आया, भागवत यहाँ की चीज है वहाँ से प्रयोग कराया और यहाँ की चीज डीटी है जो आज भी वहाँ जा करके भी रख रही, वहाँ कुछ भी होता नहीं है इस तरह। डीटी यहाँ की, तुलसी यहाँ की, यहाँ से मारा जाती है, यहाँ से कोई चंदन जा रहा है और उधर से क्या आ सकता है, सुंदर कागज, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, डिक्टाफोन, ये सब आ सकते, क्योंकि वहाँ यही है, वहाँ ये चीज है नहीं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं वास्तव में सोचना चाहिए। श्रीलोपा जी की कृपा से बात समझ में आई, नहीं तो लोग नहीं समझ रहे थे, और समझ में आ रहा है कि वास्तव में भारत कितना गौरवशाली है। जब श्रीलोपा जी का पहला प्रवचन मैं सुना था, प्रभुपा जी उस समय गोरखपुर में बोल रहे थे, भाई हनुमान प्रसाद को साथ में बैठे थे, तो प्रभुपा जी कहते हैं कि हमारे देश के लोग जाते हैं इंग्लैंड और अमेरिका, तो वहाँ लोगों से भीख मांगते हैं, हमको थोड़ा गेहूं दे दीजिए, हमको थोड़ा चावल दे दीजिए, हमारे देश में अकाल है, जनता खाने के लिए। प्रभुपा जी इतना कड़े स्वर में बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे पास इतना धन है, इतना धन है कि इसके आगे किसी की तुलना नहीं है। वो बता रहे थे धन के विषय में, अपार धन है। तो इस तरह से इस आंदोलन के द्वारा यह पता चला कि हमारा कितना धन गड़ा हुआ है, हम बहुत धनी, बहुत धनी होंगे, सौभाग्य का पता ऐसे चला। बाहर के लोगों ने ग्रहण किया और वे जब नाचे गाए, प्रचार की, प्रभुपाद जी का साथ दिए, और जब उधर से आई वस्तु, तब लोगों ने समझा कि ओ ये तो अद्भुत चीज है, अद्भुत बात है। लेकिन अब हमारा कर्तव्य बनता है कि काफी समझ में आ चुका है कि हमारे देश की चीज है, हमारे भूमि की चीज है, तो यह हमारे लिए बहुत उपाय है, और ऐसा सबके लिए है, सारी दुनिया के लिए है। हमें तो समझना चाहिए कि हमारा इस पर पूर्ण अधिकार है, हमें इसे लेना चाहिए। जैसे भगवान का नाम है, यहाँ तो अनादि काल से भगवान का नाम गाया जा रहा है, और वहां जब प्रभुपाद गए तब पता चला कि भगवान का नाम भी है या भगवान का कोई रूप भी है। नहीं तो लोग यही मानते भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। पर आज भी आप देखिए, प्रभुपाद जी के अलावा जो विदेशों में मान्यताएं हैं भिन्न भिन्न धर्म, जैसा सर्वम प्रभु कह रहे थे, कोई रूप नहीं है भगवान, कोई नाम नहीं है। आप जाइए उनके धर्म स्थल में, चारों तरफ से दीवार है, दीवार के पास खड़े होकर के अब क्या बंदगी करते हैं, किसकी करते हैं, क्या सोचते हैं, कोई प्रैक्टिकल भगवान का न रूप वहां दिख पड़ रहा है, न भगवान का कोई गुण है। हम देखे हैं जा करके, लेकिन संडे को एक जगह पर गए थे, पहुंच गए थे, इंग्लिश में एक व्यक्ति बोल रहा था, कुछ आगे आगे बोल रहा था और सब लोग रिपीट कर रहे थे, इंग्लिश में बोल रहा था, हमने जो कुछ भी पाप किया है, कुछ गुनाह किया है, हम आपको दे रहे, तो आपको से मतलब दीवाल को दे रहे कि हवा को दे रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, गुनाह दे रहे हैं, पाप दे रहे हैं, और एक आदमी फूल ले जाकर नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं। पाप हम जो 7 दिन 9 दिन किए हैं उसको हम आपको अर्पण करने जा रहे हैं, और आग्रह कीजिए जिससे कि हम आगे खूब पा करके और 7वें संडे को लाकर आपको दे दें। ये तो बात नहीं बोल रहे थे, मेरा कॉइंट था। लेकिन आप देखिए इधर के लोगों की क्या, जो प्रभुपाद जी ने सिखाया या हमारे आचार्यों ने और लोगों ने भी जो सिखाया अनादि काल से, हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान का रूप है, भगवान का रूप हम देखते हैं, भगवान का नाम बोलते जाते हैं, और भगवान के लिए गार्लैंड लेकर जा रहे हैं, माला लेकर जा रहे हैं, भगवान के लिए कुछ भेंट लेकर जाते हैं। उधर गार्लैंड बनता ही नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने पहले पहले सिखाया, भगवान के लिए फूल की माला बनाई जा सकती है, नहीं तो आज ही उधर मिलता है कि फूल का गुच्छा मिलता है, ऐसे किसी बर्तन में सजा करके या प्लास्टिक में सजा करके दे, क्योंकि भगवान का कोई गर्दन है, मुड़ी है, कुछ भी नहीं, तो फूल की माला कैसे पहने। तो श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में जो दिया भगवान को इन्हें क्लियर, ये अनुपम दान बहुत बड़ा दिया। भगवान का सही सही वर्णन जो शास्त्रों में है उसको उन्होंने किया और दिया। एक बच्चा समझता है कहा ये भगवान, कहना नहीं पड़ा है, वो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, छोटा बच्चा। अच्छा, और इसके साथ आप जानते भोजन कितना आवश्यक है, भोजन से हम मन बुद्धि या शरीर बन रहा है, तो भोजन ईश्वर के द्वारा निर्धारित है मनुष्यों के लिए क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। पर इस प्रकार के सात्विक और डिवोशनल भगवान की भक्ति में भोजन को श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया है। यद्यपि वो भारतवर्ष में था, इसके पहले भी भगवान को भोग लगा खाते थे यहाँ लोग, लेकिन यहाँ के लोग तो जानते थे पर उनके लोग तो बिल्कुल नहीं जानते। तो भगवान खाते हैं यही ज्ञान नहीं था तो फिर वो क्या पदार्थ बने। प्रभुपाद जी ने बताया भगवान खाते हैं, हम कुछ भी भोजन खाते हैं सात्विक तो उसे अर्पण करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति भगवान को अर्पण कर सकता है, कोई भी समर्पण कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्थित परफेक्ट वैज्ञानिक ढंग से